सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति यथा पङ्केन पङ्काम्भाम् सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। बोलिए। यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से पंक अंभा कीचड़ मिश्रित जल सूर्या मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूत हत्याम पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञ है यज्ञों के द्वारा मार्ष्टुम प्रायश्चित करना अर्हति संभव है। अनुवाद मेरे पीछे बोली। जिस प्रकार गंदले जल को कीचड़ में से छान कर नहीं निकाला जा सकता अथवा मदिरा के धब्बे लगे पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। इस कलह तथा कपट के युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है, ये भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहां पर ये अंतिम श्लोक है जो युधिष्ठिर महाराज अपने शोक में बोल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। किस बात का शोक कर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जो हत्याएं हुई हैं, नर हत्या जो हुई हैं, वो केवल मेरे कारण हुई हैं कि मैं राज्य सिंहासन पर बैठना चाहता था। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अब राज्य सिंहासन पर बैठ गए तो शोक कर रहे हैं, और इसके पहले अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं युधिष्ठिर महाराज। भगवान कृष्ण ने उनके 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और सब कुछ कार्य संपन्न करा के और सब विघ्न बाधाएं मिटा करके निष्कंटक राज्य प्रदान करके युधिष्ठिर महाराज को, अब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर गमन कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उनको रोक लिया। युधिष्ठिर का ये विचार है कि आपने हमारे संकट तो मिटा दिए, बाहर के संकट तो मिटा दिए, जो मेरा अंदर का शोक है ये और बढ़ गया। तो बाहर की समस्याएं तो दूर हो गई हैं, ये अंदर की समस्या पैदा हो गई है कि नहीं, तो इसलिए भगवान कृष्ण को उन्होंने रोक लिया। और ये जो श्लोक है ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इससे बहुत ही शिक्षा निकाल रहे हैं। इसमें युधिष्ठिर महाराज 2 प्रकार की तुलनाएं दे रहे हैं। पहली तुलना क्या है, यथा पंके ने पंकाम भा। ये श्लोक देखिए, यथा माने जिस प्रकार, है ना, पहली पंक्ति में जिस प्रकार और दूसरी पंक्ति में तथा यानी उसी प्रकार, जिस प्रकार और उसी प्रकार, है ना। तो तुलना बहुत ही सुंदर है। क्या कह रहे हैं, यथा पंके ने पंकाम्भा, पंख अंभा, पंख माने कीचड़, पंकज बोलते हैं कमल को, जा माने जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेता है कमल, इसलिए उसको बोलते हैं पंकज, है ना। पंख माने हैं कीचड़, तो पंख से पंख का जल शुद्ध नहीं किया जा सकता, कीचड़ से कीचड़ का पानी शुद्ध नहीं किया जा सकता। कीचड़ का पानी आप समझ रहे हैं, कीचड़ से पानी निकलता है बहुत गंदा होता है, तो कीचड़ से शुद्ध नहीं किया जा सकता है। कीचड़ के पानी को शुद्ध किया जाता है कैसे, बालू से, स्वच्छ बालू। किसी बर्तन में स्वच्छ बालू डाली जाती है और नीचे छेद किया जाता है, जिससे बालू नहीं गिरेगी, उतना छोटा छेद किया जाता है, और उससे जो है ना जो कीचड़ का पानी डाला जाता है तो वो जो जो पानी निकलता है उसके बर्तन के नीचे से वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो बालों से छाना जाता है पानी को, और फिर उस बालों को फिर साफ किया जाता है या बालों को बदली जाती है। तो इस प्रकार से जो है पानी को छाना जाता है, पानी छानने की ये विधि है। लेकिन कीचड़ से अगर कीचड़ भर दो उस बर्तन में और फिर उसमें कीचड़ का पानी डालो तो क्या होगा, और गंदा हो जाएगा। कीचड़ से कीचड़ का जो पानी है वो शुद्ध नहीं होता बल्कि और ज्यादा अशुद्ध हो जाता है। तो उनका ये कहना है युधिष्ठिर महाराज का। उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से भूत हत्याम, जो हमने नरसंहार इतना बड़ा नरसंहार किया है, ये जो है शुद्ध नहीं किया जा सकता है। कैसे, कर्मकांडी यज्ञों के द्वारा जन्म पशुओं की हत्या की जाती है। अब युधिष्ठिर महाराज का यह कहना है कि ये जो कर्मकांडी यज्ञ है ये और ज्यादा दूषित है, और ज्यादा इनमें पाप है। जो हमने नरसंहार किया है तो इससे ज्यादा पाप है इन कर्मकांडी यज्ञों में। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कर्मकांडी यज्ञों में एक स्वार्थ होता है। पशु की हत्या करके कोई व्यक्ति पुत्र पाना चाहता है, कोई व्यक्ति और भी जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करके और एक निर्दोष पशु को मारते हैं, हत्या करते हैं, या पशुओं के मांस खाने की इच्छा करके अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, तो वो तो और भी ज्यादा पाप है। युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि ये जो नरसंहार हुआ है इसमें तो कुछ कारण और भी हैं जो उचित थे, कुछ और भी उचित कारण है, क्योंकि सबका समर्थन मिला, कृष्ण का भी समर्थन मिला, ऋषि मुनियों का समर्थन मिला और बहुत से राजाओं का समर्थन मिला, जिसमें तो कुछ कारण उचित थे। लेकिन ऐसे कर्मकांड यज्ञों में तो एकमात्र कारण क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति। और प्रभुपाद जी सारा कर रहे हैं कि दूसरे महाराज आगे जो होने वाले यज्ञ हैं, कलयुग में होने वाले यज्ञ हैं, उनको इशारा कर रहे हैं कि आगे ना किया जाए, आगे से ये सब यज्ञ ना किए जाए। क्योंकि कलयुग में जो लोग यज्ञ करेंगे वो केवल अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, पशु का मांस खाने के लिए यज्ञ करेंगे, तो और भी ज्यादा गलत है वो, है ना। तो ये जो है युधिष्ठिर महाराज का कहना है। और प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से हरिनाम यज्ञ भी अगर करता है, पशु की हत्या करके अगर हरिनाम यज्ञ करता है, सोचता है चलो हम पशु की हत्या करें और फिर हरिनाम यज्ञ करें तो नाम का कीर्तन करें तो उससे हम छूट जाएंगे, तो वो जो हरिनाम है, ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है, ये भी शुद्ध नहीं करेगा उसको, क्योंकि इसमें अपराध हो जाता है। क्या अपराध होता है, नाम के बल पर पाप करना। इस प्रकार से कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है। ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े को मारा गया और घोड़ा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ता है, अपनी इच्छा से दूसरा शरीर प्राप्त करता है। बहुत अच्छा वर्ण शास्त्रों में मिलता है, तो वो हम पढ़ के सुनाएंगे वो कैसा वर्णन है युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ का। और जो घोड़े ने शरीर छोड़ा, और उग्रसेन महाराज उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ हुआ तो घोड़े ने कैसे शरीर छोड़ा वो हम पढ़ के सुनाएंगे। तो यहां पर जो प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कलयुग में मना है इस प्रकार के यज्ञ, मना है। तो श्रीधर स्वामी की जो इस श्लोक में जो टीका है वो भी इसी प्रकार से है। घन पंकेर पंकाम्भो न मृज्यते, कि घने कीचड़ से कीचड़ का पानी है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता कि आप छान करके निकालो, नहीं। यथावा सुरालेश कृतम अपावित्र्यम भाविया सूर्या न मृज्यते। और दूसरी तुलना क्या है कि शराब का अगर कुछ धब्बा लगा हो किसी बर्तन में तो ज्यादा शराब से उसको धो तो क्या होगा, और अशुद्ध हो जाएगा। अगर शराब का धब्बा लगा है किसी बर्तन में तो आप ज्यादा शराब से उसको धोओगे तो क्या होगा, और अशुद्ध हो जाएगा। शराब तो इतनी अशुद्ध है कि एक कलश गंगा जल में एक बूंद अगर शराब की मिल जाए तो वो क्या है, क्या है, अशुद्ध है, वो भी अशुद्ध है। फिर अगर शराब का एक धब्बा जो है अगर ज्यादा शराब से धो उस बर्तन को साफ करो शराब से तो क्या होगा, और ज्यादा शुद्ध। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर रूप में दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और ये कर्मकांड यज्ञ जो है इसी प्रकार से जो है ना व्यक्ति को जो है दूषित बनाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है वो कैसा है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, विशेर भांड विषय, विष का मतलब जहर और भांड माने बर्तन। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल क्या है, जहर के बर्तन है कि नहीं। तो इस तरह से जो युधिष्ठिर महाराज निंदा कर रहे हैं कर्मकांड यज्ञों की, वास्तव में उन्होंने जो किया उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर तो रहे देखने में उसी की निंदा कि हमने जो किया उससे मैं पापों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इशारा उनका आगे चल करके जो करेंगे लोग यज्ञ उनकी तरफ इशारा है। तो श्री स्वामी ने यह कहा है कि भूत हत्याम एक आम प्रमाद तो जाता, अगर किसी प्राणी की हत्या हो जाए प्रमाद से गलती से हो जाए तो वो जो है शुद्ध नहीं हो सकती है। बुद्धि पूर्व हिंसा प्रायर यज्ञ माष्टुम सो है तुम, कि बुद्धि पूर्वक उद्देश्य हत्या का उद्देश्य करके जब यज्ञ में पशु को मारा जाता है तो वो तो और ज्यादा पाप है। अगर भूल से किसी प्राणी की हत्या हो जाए और वास्तव में तो भूल से हुआ एक प्रकार से, तो धृष्टि महाराज का ये भी कहना है कि ये जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ ये तो भूल से हुआ, क्योंकि इरादा ही नहीं था कितने लोगों की हत्या की जाए। इरादा क्या था, धर्म के लिए युद्ध करना। इरादा क्या था युधिष्ठिर का, इरादा क्या था, अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध है कि नहीं, और इतने लोगों की हत्या हो गई तो ये इरादा नहीं था, तो ये तो जो है ना फिर भी कम है। लेकिन यहां पशु की हत्या का इरादा करके पशु की हत्या की जाती है यज्ञ में तो वो तो ज्यादा उससे ज्यादा पाप है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो है ये सारा कर रहे हैं। अब एक घटना जो है हमने पद्म पुराण में पढ़ी थी उसको मैं बताता हूं। भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में आप जानते हैं घोड़े को मारा जाता है, तो भगवान राम क्या करते हैं उस घोड़े को छूते हैं और कहते हैं हे अश्व तुम मुझे पवित्र करो। ये भगवान की विनम्रता है, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं तो कह रहे हे घोड़े तुम मुझे पवित्र करो। छुआ तो छूते उसने शरीर छोड़ा और दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया उसने, तो फिर सब लोग चकित हो गए ये क्या है, उसको तो मारा नहीं काटा नहीं कुछ नहीं, उसने वैसे ही शरीर छोड़ दिया और दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया, मतलब दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था इतना तेजस्वी उसका शरीर था। तो भगवान राम मनुष्य लीला करते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो, हमें लगता है तुम तो कोई बहुत बड़े तेजस्वी व्यक्ति हो, और किस कर्म के कारण तुमको घोड़े का शरीर प्राप्त हुआ। तो वो जो घोड़ा था वो बताता है, अभी तो दिव्य पुरुष बन गया वो, तो वो बताता है कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था और इसी अयोध्या में रहता था, आपके राज्य में ही रहता था, और सरयू की किनारे मैं पूजा कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, और दुर्वासा मुनि आए मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैं दिखाने के लिए कि मैंने उनको नहीं देखा, ये भी होता है ना दंभ, ये दिखाने के लिए कि मैंने उनको नहीं देखा, मैं अपनी पूजा में लगा रहा और दिखा रहा था कि मैं कितनी अच्छी पूजा कर रहा हूं। दुर्वासा मुनि आप समझ रहे हैं, तो ये एकांत भजन में ऐसे ही होता है, एकांत भजन में फिर ये भावना होती है भी जो लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए वो देखें कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं, तो मैं अपने भजन में मस्त है ना। तो वो दंभ था, तो दुर्वासा मुनि समझ गए कि कितना ये दंभी है, समझ गया है कि मैं आ गया हूं, लेकिन ऐसे दिखा रहा है कि जैसे इसने देखा नहीं है, है? और दिखा रहा है कि मैं कितनी सी पूजा कर रहा हूं, तो साफ दिया कि तुम घोड़ा बन जा। तो फिर वो कहता है, वो दिव्य पुरुष कहता है कि मैंने उनसे क्षमा प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर जब क्षमा करते हैं तो फिर बहुत बड़ा वरदान देते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने फिर कहा कि साप तो बदल नहीं सकता, लेकिन तुम क्या बनोगे, भगवान राम के अश्विनी के घोड़े बनोगे, और जब वो तुम्हें छुएंगे तो तुम सांप से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान राम ने उसको छुआ और कहा कि तुम मुझे पवित्र करो, और वास्तव में वो पवित्र हो गया। तो ये घटना जो है पद्म पुराण की है, ये मैंने बताई। तो मतलब देखा कि कैसे जो पशु है वो शरीर छोड़ता है और सबके सामने कैसा जो है उसको जीवन प्राप्त होता है, एक घटना ये है। दूसरी घटना है गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड में, ये अश्वमेध खंड है और 56वां अध्याय है। इसमें उग्रसेन महाराज का अश्वमेध यज्ञ हुआ है और सब जो है ना ऋषि हैं, व्यास देव जैसे महान ऋषि हैं जो यज्ञ करा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनिए। अग्नि में क्या हुआ, घी की आहुतियां डाली, अग्नि में घी की आहुतियां डाली। इसके बाद अग्निदेव ने सबके समक्ष महाराज उग्रसेन ने कहा, महाराज उग्रसेन से कहा, हे राजन मैं प्रसन्न हूं, अब मुझे पशु प्रदान करिए। अग्नि ने कहा, तथा प्रोवाच वह निस्तुम सर्वेशाम क्षणवताम नृपम प्रसन्नोहम प्रसन्नोहम पशुम मम प्रियच्छव। मुनियों के साथ सभा में बैठे हुए यादवेंद्र उग्रसेन ने अग्नि की बात सुनकर सुवर्ण के स्तंभ में सोने की रस्सी से बंधे हुए श्याम कर्ण घोड़े की ओर देखकर कहा, वो घोड़ा सोने के खंभे से बंधा है और सोने की रस्सी से बंधा हुआ है। तो घोड़े से कहा, देख रहे हो, घोड़ा समझ रहा है। तो घोड़े से उग्रसेन महाराज ने कहा, निशम्य चांग निर्वचनम सभायाम श्री यादवेंद्रो मुनि भी समम चांग बद्धम तुरंगम तपनीय यूपे हिरण दामना च तमा है भूपाहम। अब उग्रसेन क्या कहते हैं, उग्रसेन बोले, हे अश्व तुम अग्नि की बात सुनो, घी की धारा से तृप्त होकर भी अग्निदेव शुद्ध यज्ञ पशु तुमको भक्षण करना चाहते हैं। अग्रेरवाक्यम सुनो है शुद्धम त्वाम चा पशुम कृतुम भक्षी सती वह निस्तुम घृतोति। उग्रसेन की बात सुनकर प्रसन्न मन से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए श्याम कर्ण अश्व ने अपना मुंह हिलाया, वो बोलता तो नहीं है लेकिन सुनता है और समझता है, और सिर हिलाया। सिर हिलाने का मतलब क्या है, स्वीकृति लक्षणम, सिर हिलाया उसने अपना। नपस्य वचनम श्रुत्वा श्याम कर्णस्तु रंगमः कृष्णम विलोकयन् प्रीतः कंपयामास स्वाननम। अश्व का अभिप्राय समझकर गर्ग जी के साथ बड़े बड़े मुनियों और श्री कृष्ण आदि राजाओं समेत अनेक विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और यज्ञ देखने आए हुए शूद्र और स्त्रियों से भरी उस यज्ञ स्थली में व्यास जी ने बलदेव जी से कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब देख रहे हैं कि कैसे वो शरीर छोड़ता है, एक बहुत बड़ा जो है एक ये दृश्य होता है, बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य होता है, तो सब देख रहे हैं। और व्यास जी ने किससे कहा, व्यास जी ने किससे कहा, बलराम जी से, व्यास जी ने बलराम जी से कहा, ततोहय मतम ज्ञात्वा वेद व्यासा समम मयाम मंडपे मुनिर्योक्ते श्री कृष्णादेर्न पैर व्रते ब्राह्मण क्षत्रिय रवैश शूद्र यज्ञ दिदिक्षु भी स्त्री भीतम प्रलम्बनम प्राय द्वय पायन हो मुनि। हे बलभद्र जी उठिए और तलवार लेकर अग्नि की प्रसन्नता के लिए अति शीघ्र इस अश्व की गर्दन काटिए। उत्तिष्ठ बलभद्रत्वं करवालं प्रगृह्य च छिन्दिकं वाजिनश्चाग्ने प्रीतये यधुना त्वरम्। हे राम, राम किसको कह रहे हैं? बलराम को। हे राम, इस अश्व को मारकर अग्नि में हवन करने से यज्ञावतार भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। निहते तो रगे रावण हवने चा कृत सती यज्ञावतार कृष्णस्तु प्रसन्नो भवती कृतो। गर्ग जी कहते हैं, हे राजन, ये पूरी कथा गर्ग जी सुना रहे हैं और शायद राजा प्रतिबाहु को सुना रहे हैं। हे राजन, व्यास जी के वचन सुनकर बलराम ने खड्ग से तुरंत उस अश्व का सिर काट डाला और वह मस्तक उड़कर आकाश में चला गया। देखा, वो मस्तक जो है नीचे नहीं गिरा। क्या हुआ उस मस्तक का? आकाश में चला गया। एवं व्यास वचः श्रुत्वा बलः खड्गेन सत्वरं शिरोहयस्य चिच्छेद तच्छिरो गगनं व्ययम्। घोड़े का सिर सूर्य मंडल में जाकर लय हो गया। ये देखकर सभी देवता, दानव और मानव विस्मय में पड़ गए। ये दृश्य है, ये आश्चर्यजनक था देवताओं के लिए भी और दानवों के लिए और मानवों के लिए, सबके लिए आश्चर्यजनक था दृश्य। कभी ऐसा होता? गत्वार्धम नपसार्दूल लीनम तंद्र विमंडले देव देते नरा सर्वे तम दृष्ट्वा विस्मयम गता। तब हंसते हुए भगवान कृष्ण ने अश्व के हृदय में एक त्रिशूल मारा। वो घोड़ा गिरा नहीं। कोई पशु को जब काटते हैं तो उसका शरीर गिर जाता है, सिर भी गिर जाता है, शरीर भी गिर जाता है। सिर भी नहीं गिरा जमीन में, ना शरीर गिरा, सिर तो चला गया आकाश में और शरीर उसका खड़ा हुआ है, उसको कष्ट नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? वो पशु की जो हत्या हुई है उसमें पशु को कोई कष्ट नहीं, ना उसको कोई मरने का ना तो भय है और ना कष्ट है। उसका शरीर खड़ा हुआ है तो उसके हृदय में भगवान ने त्रिशूल मारा तो उसके हृदय से खून निकला। क्या निकला? मकरंद के समान धारा निकली। हयस्य हृदय शूलम निजगान हसन हरि मकरंद समाधारा राजन तत्र विनिर्गता। मकरंद क्या होता है? जो भी हो कुछ, मधु, ठीक है, तो जो भी हो ले, वो कुछ पवित्र वस्तु है वो मकरंद। मकरंद के समान धारा निकली। उसके बाद उस घोड़े के शरीर से एक ज्योति निकली जो सबके देखते देखते भगवान कृष्ण में लीन हो गई। ततश्च निर्गता ज्योतिष तुरगस्य कलेवरात् पश्यताम चैव सर्वेषां विवेशः मधुसूदने। फिर उस अश्व का शरीर कपूर होकर गिर पड़ा, जैसे शंकर जी के शरीर से छूटकर भस्म में गिरी हो। पूरा शरीर कपूर बन गया, मतलब मांस नहीं, ना खून है, ना हड्डी है, कुछ नहीं है, कपूर कपूर होकर के वो शरीर गिर गया। पश्चात भूत्वा च कर्पूर शरीरम पतितम पशो गात्राच्युता यथा राजन विभूति शंकरस्य च। वो इतना सुगंध कर्पूर है, इतना सुगंधित है, उस अद्भुत कर्पूर की सुगंधि से सारी सभा और पूरी द्वारका पूरी भर गई। 100 योजन की द्वारका है, 800 मील की द्वारका है, पूरी द्वारका में उस कपूर की सुगंध भर गई। देखा कैसे, मतलब ये स्थिति है, कैसी स्थिति है। दृष्ट्वा कर्पूर समूहम अद्भुतम सभाम सुगंधे निवृताम च द्वारकाम व्यासादयस्ते मुनयः प्रहर्षिता ऊचुर्ण्यपम वे क्रतु कर्मणि स्थितम। तो ये घटना हमने सुनाई आपको। कौन सी है? अश्वमेध यज्ञ कहां पर है? द्वारका में। किसने किया है? महाराज उग्रसेन ने। अच्छा, आप सुनिए, ये जैमिनी अश्वमेध पर्व है महाभारत का। युधिष्ठिर महाराज जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो सुनिए क्या हुआ। तत्पश्चात यज्ञ कर्म में दीक्षित हुए महाराज युधिष्ठिर ने स्नान किया और स्वर्ण राशि के समीप जाकर वे इस यज्ञी अश्व को वहां ले आए। युधिष्ठिर महाराज उस घोड़े को ले आए। फिर उसके आगे पशुरभूत इस श्रुति का पाठ करते हुए वे उस घोड़े से कहने लगे, ए घोड़े, अब तू जल पान कर, इससे तुझे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोड़े से कहा कि तुम पानी पियो, घोड़े से कह रहे हैं। युधिष्ठिर रहा कृत स्नान यज्ञ कर्मण दीक्षित सुवर्ण चय मासाद समानी है तुरंगम प्रोवाचा ग्रे पशुरभू श्रुति में ताम पठन पुराम वैभोज तुम अपो घोट तब लोको भविष्यति। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर वो घोड़ा स्वयं ही अपना मुंह हिलाते हुए आनंद पूर्वक श्री कृष्ण की ओर देखने लगा, सिर हिला रहा है, किस लिए? स्वीकार की भावना में, स्वीकार है मुझे, और आनंद पूर्वक कहां देख रहा है? कृष्ण की ओर देखने लगा। युधिष्ठिर से तन्वाक्यम आकरण है तुरग स्वयं धूनिया मास्त वदनम अपश्यन केशवम मुदा। फिर उस घोड़े ने नथुन ने फड़फड़ाकर नकुल से अपना अभिप्राय सूचित किया। नथुन ने फड़फड़ाकर, मैं बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन वो समझता है, और नथुन उस इशारा कर रहा है नकुल से, क्या इशारा कर रहा है? तब नकुल उस घोड़े के मनोभाव को समझकर धर्मनंदन युधिष्ठिर से कहने लगे, प्रोथाभ्याम स्वम अभिप्रायम ससंतय नकुलाय सहम ज्ञात्वा भावम तुरंगस्य नकुलः प्राह धर्मजम। अब नकुल क्या कह रहे हैं, राजेंद्र ये घोड़ा सूचित कर रहा है कि वीर मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। वो घोड़ा कह रहा है कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, तो कहां जाना चाहता है? किंतु स्वर्ग कामना पर अन्य घोड़ों अन्य यज्ञों में जो घोड़े स्वर्ग लोक में गए हैं उन यज्ञों में श्री कृष्ण कार्यकर्ता नहीं थे, तो दूसरे यज्ञों में स्वर्ग जितने घोड़े हैं वो स्वर्ग गए हैं, तो क्यों गए? तो श्री कृष्ण नहीं थे उन यज्ञों में, लेकिन यहां यज्ञ में श्री कृष्ण है तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वो घोड़ा बहुत बुद्धिमान है, हम लोगों से सबसे हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो घोड़ा, वो कह रहा मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बाजी संसति राजेंद्र नाम यासे त्रिविष्टपम अन्येषु किन्तु यज्ञेषु स्वर्ग कामेषु ये हयाम त्रिविष्टपम गता वीरतेषु कृष्णो न कर्म कृन। नकुल घोड़ों की भाषा जानते थे, नकुल घोड़ों की भाषा जानते थे, नकुल से कहा तो नकुल बता दिया, उसका अनुवाद करके हिंदी में बता दिया युधिष्ठिर महाराज से, घोड़े की भाषा को हिंदी में अनुवाद करके युधिष्ठिर महाराज को बता दिया। मेरे ख्याल से नकुल ही थे अज्ञातवास में जो विराट के घोड़ों की देखभाल करते थे, तो वो घोड़ों की भाषा जानते थे, तो उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके बता दिया कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, जितने घोड़े थे अभी तक स्वर्ग गए हैं क्योंकि कृष्ण यज्ञ में नहीं थे, अभी कृष्ण यज्ञ में है तो मैं स्वर्ग क्यों जाऊं, घोड़ा कह रहा है। इस भूतल पर यज्ञ करने वालों के ईश्वर रहित यज्ञों में स्वर्ग ही परम फल रूप से मिलता है। वो ईश्वर रहित यज्ञ थे, ईश्वर सहित नहीं थे वो यज्ञ, ईश्वर रहित थे, अभी ईश्वर सहित यज्ञ हो रहा है, परंतु इस यज्ञ में तो साक्षात श्री हरि फल रूप से विराजमान है, अतः याज्ञिक लोग मुझे भी श्री कृष्ण के शरीर में स्थित देखेंगे। घोड़ा कहता है अनीश्वरेषु यज्ञेषु स्वर्गस्तु परमं फलं जायते भवि कर्तृणाम अस्मिन् यज्ञे फलं हरिं ममापि कृष्णवदने स्थितं पश्यन्तु याज्ञिकां। कृष्णवदने, कृष्णवदन का मतलब वैसे मुंह है, कृष्ण के मुख में देखेंगे मुझे। धर्मराज आपके इस महायज्ञ में भली भांति अभिमंत्रित हुआ ये अश्व ये कह रहा है, इतनी बात घोड़े ने कही जो नकुल ने किसको बताई? युधिष्ठिर महाराज को बताई। अब यज्ञ स्तंभ के निकट जाते हुए इसे तथा श्री कृष्ण को समस्त मुनि राजा लोग और स्त्रियां भी देखें। एवं ब्रूते धर्मराज तुरंगस्ते महाक्रतौ अथैनम मुनयः सर्वे योपपार्श्वे सुमन्त्रिताम् राजानां स्त्री समूहोऽपि यान्तं पश्यन्तु माधवम्। नकुल की बात सुनकर वह अश्व यूप के समीप ले जाया गया, वहां श्री कृष्ण सहित ब्राह्मणों ने उसे अभिमंत्रित किया, तत्पश्चात उस अश्व को यज्ञ स्तंभ में बांध दिया गया। नकुलस्य वचः श्रुत्वा यूपे नीतस्तुरंगमः यूपे बद्धो हयो विप्रः स कृष्णैरभि मन्त्रिताम्। उस समय धौम्य जी ने कहा, धौम्य जी ने कहा महाबुद्धिमान भीमसेन, जब तक मैं इस घोड़े की परीक्षा करता हूं उतनी देर तक तुम तलवार लेकर खड़े रहो। भीम खड्गम समादाय तिष्ठतुम निश्चलः क्षणम यावत् परीक्षाम कुर्वे हम वाजिनो शय महामते। जन्मेजय, ये जैमिनी ऋषि जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, जो जैमिनी महाभारत है इसमें जैमिनी जी सुना रहे हैं जन्मेजय को, जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं और जैमिनी व्यास जी के शिष्य हैं। तत्पश्चात जब धौम्य ऋषि ने उस घोड़े के बाएं कान को दबाया, सुन रहे हैं ध्यान से, धम ऋषि ने क्या किया, घोड़े के बाएं कान को दबाया दबाया, तब उसमें से दूध की धारा निकलने लगी। क्या हुआ, बाएं कान को दबाया तो दूध की धारा निकलने लगी। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, इसके शरीर में रुधिर तो नहीं दिख रहा है, खून तो है नहीं इसके शरीर में, घोड़े के शरीर में। तथोधम वयश्याश्रु वाम कर्णम न्यपीडयन तावच्छिरस धारा तो निर्गता जनमेजये विस्मिता सकला लोका शोणितम नैव दृश्यते। फिर महर्षि धौम ने भीमसेन से कहा, भीम अब तुम इस घोड़े का सिर काटो जिससे प्राण पुरुषोत्तम भगवान जगदीश्वर प्रसन्न हो जाए। धौम्यो ब्रवीन भीम सेनम छिंदिकम वाजिनोधुना यथा तुस्य जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम। उसमें बाजों का गंभीर शब्द हो रहा था, बाजे बज रहे थे, ये बहुत ही ये हर्ष की घटना है कि घोड़े का सिर काटा जा रहा है, बड़ी हर्ष की, बाजे बज रहे थे। उसी बीच भीम ने उस अश्व के मस्तक को काट दिया, कटा हुआ सिर नीचे न जाकर ऊपर आकाश में उछला और अग्नि रूप होकर सूर्य में प्रविष्ट हो गया। वादित्रनादे महति प्रवर्तिते भीमो लुना तस्य शीर्षम ऊर्धम गतम तच्च शिरो न चाधा सूर्य प्रविष्टम के लिए वहनी रूपम। उस घोड़े को शुद्ध जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बेल के कांटे से उसकी छाती में छेद कर दिया, बेल का कांटा लिया और छाती में छेद किया। तो क्या हुआ, वो भी उसका शरीर नहीं गिरा, सिर कट करके ऊपर गया और कहां गया, सूर्यलोक में गया, और शरीर जो है गिरा नहीं है, न उसे कष्ट हो रहा है। कष्ट होता तो फिर कैसे वो खड़ा रहता, किसी का सिर कट जाए तो क्या खड़ा रहेगा, वो गिर जाएगा। उसमें पूरी शक्ति है और उसमें कोई कष्ट नहीं है, शरीर उसका खड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण उसके छाती में छेद करते हैं बेल के कांटे से। श्री कृष्ण द्वारा विदीर्ण किए जाने पर वह अश्व पवित्र हो गया। शुद्धम ज्ञात्वा हृषीकेशं ततोदय न मरुस्थले बैलवेन कंटके नापि भिन्ना कृष्णेन पावना। उस समय घोड़े के शरीर से दूध की धारा बह चली, तब उस बहती हुई दुग्ध धारा को देखकर ऋषियों ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन अब से पहले किसी का भी अश्व इस प्रकार शुद्ध नहीं देखा गया था। ऋषि लोगों ने तो बहुत यज्ञ देखे हैं, हजारों हजारों साल उन्होंने यज्ञ देखे हैं, ये कहते हैं कि इतना पवित्र तो कभी कोई घोड़ा नहीं हुआ अभी तक। निर्गता क्षीर धारा तो तुरगस्य कलेवरात धाराम विनिर्गताम वीक्षय ऋषियो धर्मम अब्रुवन एवं विधो न कश्यापि शुद्धा पूर्वम तुरंगमः। उसे शुद्ध जानकर भगवान श्री कृष्ण धर्मनंदन युधिष्ठिर से कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके घोड़े को इस प्रकार शुद्ध हुआ देखकर ये ऋषिगण वैसी बातें कह रहे हैं, इससे आपका यज्ञ सफल हो गया, सफल हो गया, और नहीं तो क्या होता, वो एक और पाप हो जाता, अगर घोड़े के शरीर को कष्ट होता, घोड़े को अगर कष्ट होता तो एक और पाप होता, एक और हत्या हो जाती, यज्ञ सफल हो गया। शुद्धम ज्ञात्वा ऋषिकेश धर्मपुत्रम तो सोब्रवीत तथा ब्रवणते ऋषियो दृष्ट्वा शुद्धम तुरंगमम दृष्ट्याते सफलो यज्ञो जायते युधिष्ठिर। वे लोग यो बातें कर ही रहे थे तब तक घोड़े के शरीर से अत्यंत महान तेज निकला। सुन रहे हो क्या हुआ, घोड़े के शरीर से महान तेज निकला और श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश कर गया। तेसाम सम्मदताम एवं तुरंगम अकलेवरां निर्गतम सुमहातेजः प्रविष्टम केशवानने। तत्पश्चात उस अश्व का शरीर कपूर होकर पृथ्वी पर बिखर गया, ना खून है ना हड्डी है ना मांस है, कपूर होकर बिखर गया। उस समय रुद्र के शरीर से झड़कर गिरी हुई विभूति के समान शोभा पाने लगा, सफेद रंग की, शिव जी के शरीर में सफेद रंग की भस्म होती है, तो सफेद रंग की भस्म हो गया। पश्चात शरीरम पतितम भूत्वा कर्पूरम एवितन विभूति रुद्रस्य च्युता गात्रा दशो भवन। उस अश्व को कपूर हुआ देखकर उन मुनियों को महान विस्मय हुआ, फिर तो वे उसी क्षण हवन कुंड में उस कपूर की आहुतियां देने लगे। विस्मिता मुनियस्तम तुम कर्पूरम वीक्षते भवन कर्पूरम जुहवस्ते तुम होम कुंडे तु दक्षिणा। फिर वहां पत्नी सहित महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे, वहीं ब्यास जी सोवा से उस कपूर को उठाकर यूं बोले, यत्रोपविष्टो राजा सौ सपत्नी कहा समाधव हम व्यासो गृहीत्वा कर्पूरम श्रवेणे दम था ब्रवी। व्यास जी ने कहा इंद्र, व्यास जी अभी आप जाप न करो, जाप न। व्यास जी ने कहा इंद्र इस महान यज्ञ में पधारिए। व्यास जी इंद्र से कह रहे हैं इस महान यज्ञ में पधारिए और राजा युधिष्ठिर की अर्पित की हुई इस कपूर की आहुति को ग्रहण कीजिए, क्योंकि आगे चलकर कलयुग में ऐसी आहुति नहीं मिलेगी। क्या समझे? व्यास जी कहने इंद्र को कि ऐसी आहुति आगे चलकर के नहीं मिलेगी, कलयुग में आगे नहीं होगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आगे जितने यज्ञ होंगे सब घोर पाप होगा उनमें। तो व्यास जी कहते हैं आगे ऐसी आहुति नहीं मिलेगी। गृहाण इंद्र महायज्ञ घन साराहुति विभो ए ही राज्ञार्पिता मे नाम दुर्लभाम अग्रतः कलौ। तो इस तरह से हमने कुछ आपको उदाहरण दिए कि ऐसे जो है यज्ञ हुआ करते थे। और प्रभुपा जी चैतन्य महाप्रभु का कथन बता रहे हैं, तात्पर्य में क्या लिखते हैं, भगवान चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। अब बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार इसीलिए हुआ, भगवान बुद्ध का अवतार इसीलिए हुआ। तो भगवान बुद्ध ने जो है वेदों की निंदा की, जबकि निंदा करनी चाहिए उनकी जो वेद मंत्र बोलना नहीं जानते और पशु को तकलीफ होती है कि नहीं? पशु कर्म बंधन से नहीं छोड़ता है, उसको तकलीफ होती है ना? तो निंदा तो करनी चाहिए उन लोगों की, लेकिन भगवान बुद्ध जो है ना निंदा करते हैं वेदों की। निंद से यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश। भगवान बुद्ध में इतनी दया है कि जिनकी निंदा करनी चाहिए उनकी निंदा नहीं कर रहे, और निंदा कर रहे वेदों की जो वेद स्वयं उनके मुख से निकले, ये क्या है, उनकी दया ही है। जिस प्रकार से उन्होंने वेदों की निंदा की, ये वेदों में चूंकि पशु हत्या बताई गई है हम वेदों को नहीं स्वीकार कर रहे, लेकिन भगवान बुद्ध स्वयं जो है ना अपने को ज्ञान का स्रोत अपने को मानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी तरफ आकृष्ट किया उन पाखंडियों को जो वेद के नाम पर जो है पशुओं की हत्या करते हैं और अपनी स्वार्थ की तृप्ति करते हैं, तो उनको पाप से बचा करके और वेदों से दूर करके और सीधे उन्होंने अपने से जोड़ा भगवान बुद्ध ने, तो उनकी दया बुद्ध अवतार इसीलिए हुआ। तो अब समय बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो प्रश्नोत्तर जरूर करना चाहिए। कोई चर्चा या किसी का प्रश्न? इनका प्रश्न है कि कलयुग में जो है जो पशु यज्ञ हैं, संन्यास हैं, ये सब मना क्यों है? अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सतोत्पत्तिम कलोपंच विवर्जयेत। अश्वमेध यज्ञ मना है, तो हमने चर्चा की क्यों मना है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया क्यों मना है कलयुग में, क्योंकि वेदों का अध्ययन प्राचीन काल में जब करते थे बालक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके करते थे। यदि छंतो ब्रह्मचर्य वेदे वेदो वदन्ति विशन्ति यद्यति यो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण के जो हैं जो बालक होते थे वो ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते हुए और गुरु के आश्रय में वेद मंत्रों का अभ्यास करते थे। तो जो वेद मंत्र हैं ये ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है ना मतलब उच्चारण कर पाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन। जो शूद्र हैं, शूद्रों के बालक जो है वो गृहस्थी माने जाते थे, बचपन से ही गृहस्थ माने जाते थे, तो वो उनको वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, आप समझे। तो शुद्ध मंत्र का उच्चारण ना करने के कारण क्या होता था, पशु को कष्ट होता था, उसको नया जीवन नहीं प्राप्त होता, तो उसको अपने कर्म के अनुसार दोबारा उसको वही शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, तो कितनी तकलीफ है दोबारा जन्म लेना, फिर अभी मृत्यु का कष्ट हुआ फिर जन्म का कष्ट, क्योंकि तो कितने वर्ष तक उसको जो है पशु की योनि में रहना है कर्म के अनुसार, तो उसका कर्म तो दूर हुआ नहीं है कि नहीं। तो पशु की हत्या का जो पाप है वो किसको लग रहा है, यजमान को योगी कराने वाले, इसलिए ठीक है। और संन्यास मना है तो कहीं पर यह बताया गया है कि तीन प्रकार का संन्यास है, एक तो कर्म संन्यास है और दूसरा ज्ञान संन्यास, तीसरा वेद संन्यास है। कर्म संन्यास का मतलब यह है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति जो है ना सब प्रकार के जो कर्म है वो त्याग देता है और वो स्वर्ग प्राप्ति की जो है प्रतीक्षा करता है, तो ये कर्म संन्यास मना है। और दूसरा है ज्ञान संन्यास, जो मायावादी लोग लेते हैं संन्यास और वो ब्रह्म में एक हो जाना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति है। और वेद संन्यास है जो कि वैष्णव लोग जो है ना भगवान की सेवा में अपने शरीर मन वाणी को लगाना चाहते हैं, वो त्रिदंडी संन्यास भी कहलाता है, तीन दंड। तो वैष्णव संन्यास या वेद संन्यास और ज्ञान संन्यास, ये दोनों की अनुमति है कलयुग में, उस कर्म संन्यास की अनुमति नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति जो है सब कर्म छोड़ करके और स्वर्ग की प्राप्ति की आशा करे, ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण है इसलिए मना, तो ऐसा भी बताया गया है। और भी कई कारण बतलाए हैं प्रभुपाद जी ने, और भी कई कारण बतलाए हैं, इसमें काफी लंबी चर्चा हो सकती है। आपका प्रश्न कि द्वापर में तो यज्ञ नहीं कहे गए हैं, द्वापर में तो भगवान की परिचर्या कही गई है, अच्छा प्रश्न है। सत्युग में विष्णु का ध्यान, कृतीय अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजते मख है, त्रेतायाम यजतो मख है, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापरे परिचर्यायाम और द्वापर में परिचर्या के द्वारा, मतलब भगवान की सेवा मंदिर की पूजा के द्वारा, और कल होता है हरि कीर्तन, और कल वही हरि कीर्तन के द्वारा होता है। तो ये जो बातें बताई हैं ये सामान्य व्यक्तियों के लिए बताई हैं, सर्व सामान्य, कलयुग में भी सर्व सामान्य क्या करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूजा भी होती है, जो द्वापर युग की पूजा वो भी तो हो रही है, कोई व्यक्ति जब हरि नाम से शुद्ध हो जाए तो भगवान की पूजा भी कर सकता है, लेकिन पूजा भी हो रही है। लेकिन सर्व सामान्य के लिए क्या है, पूजा नहीं है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि व्यक्ति का जीवन अशुद्ध है इसलिए हर समय हर जगह हर व्यक्ति ये यज्ञ कर सकता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सामान्य सर्व सामान्य के लिए द्वापर में मंदिर की पूजा की विधि बताई गई है, लेकिन जो बड़े बड़े राजा लोग हैं वो यज्ञ कर सकते हैं, और अश्वमेध यज्ञ तो सामान्य राजा भी नहीं कर सकता है, अश्वमेध यज्ञ तो कोई सामान्य राजा नहीं कर सकता है, वो राजा जो पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को जीते, या तो प्रेम से जीते या फिर युद्ध से जीते, लेकिन जीते। कुछ राजा तो प्रेम से ही मतलब उनके यज्ञ में भाग लेते हैं, और जो नहीं प्रेम करते हैं तो युद्ध से उनको जीता जाता है, तो संभव नहीं है, किसी राजा के लिए भी संभव नहीं है ना अश्वमेध यज्ञ तो। और कोई प्रश्न किसी का, तो मैं प्रश्न करूं,
समझाना।
वे कह रहे हैं कि इन कर्मकांडी यज्ञों के द्वारा ये जो युद्ध में जो जनसंहार हुआ है इसका पाप नहीं दूर हो सकता, बल्कि और पाप बढ़ जाएगा, तो इसके लिए पहले तुलना क्या दी है, कीचड़ से कीचड़ का पानी साफ नहीं होता बल्कि और गंदा होता है। लेकिन कीचड़ में जो है ना आप अगर छानोगे कीचड़ से पानी को तो और ज्यादा गंदा होगा, है कि नहीं। तो कीचड़ की तुलना की है किससे, युधिष्ठिर महाराज ने, हाँ कर्मकांडी यज्ञ से कीचड़ की तुलना की है, मतलब कर्मकांडी यज्ञ की तुलना की है कीचड़ से। और ये जो जनसंहार हुआ युद्ध में इसकी तुलना किससे की है, हाँ कीचड़ के पानी से, तो कीचड़ का पानी फिर भी अच्छा है उसकी तुलना में, कीचड़ की तुलना में, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, और प्रभुपाद जी जो है जैसे श्लोक से शिक्षाएं निकाल रहे हैं, कौन निकाल सकता है ऐसी शिक्षाएं। और दूसरी तुलना क्या की है प्रभुपाद युधिष्ठिर महाराज ने, हाँ शराब के धब्बे को शराब से नहीं धोया जा सकता है, तो किस चीज की तुलना की है शराब के धब्बे से, किस चीज की तुलना की है शराब के धब्बे से, हाँ युद्ध में जो इतनी हत्या हुई है इसकी तुलना की शराब के धब्बे से। और जो कर्मकांड यज्ञ हैं उनकी तुलना की है किससे? शराब से। शराब का दाग छुड़ाने के लिए आप शराब शुद्ध हो और ज्यादा अशुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपका प्रश्न। हाँ, इनका प्रश्न है कि भीष्म महाराज को जो शोक हुआ तो भगवान ने स्वयं उनका शोक क्यों नहीं दूर किया और भीष्म के द्वारा दूर क्यों कराया? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है, अर्जुन का शोक दूर किया था भगवान ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, और कोई था ही नहीं भगवान के साथ। आप सुन रहे हैं, एक कारण यह है कि युद्ध भूमि में और कोई था ही नहीं कृष्ण के अलावा। तो जो भी इमरजेंसी हो, इमरजेंसी थी तो कृष्ण स्वयं भी दूर किया, एक कारण यह भी है। दूसरा कारण यह है, दूसरा कारण क्या है? नहीं, और भी है। दूसरा कारण यह भी है कि अर्जुन और कृष्ण क्या है? मित्र थे, बराबरी के थे। तो बराबरी में तो जो है मतलब चलता है, छोटे भी बन जाओ बड़े भी बन जाओ। तो कृष्ण अर्जुन के छोटे भी बन गए, सारथी बन गए, उनके गुरु भी बन गए, मित्र में सब चलता है, ठीक है। युधिष्ठिर के सामने क्या है? कृष्ण छोटे हैं और युधिष्ठिर बड़े हैं, है ना। तो ये फिर उचित नहीं बैठता, उचित नहीं होता कि छोटा बड़े को उपदेश दे सकता है, लेकिन अगर कुछ आवश्यकता पड़ जाएगी और कोई नहीं है देने वाला तो दे सकता है। लेकिन जब भीष्म जी मौजूद हैं और भीष्म जी को विशेष यश देना चाहते हैं भगवान, एक कार्य के पीछे कई कारण है। भीष्म जी को भगवान दर्शन में देना चाहते हैं, उनके शरीर त्याग के समय कृष्ण स्वयं उपस्थित रहना चाहते हैं, है ना, ये भी। और भीष्म जी को यश देना चाहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने से ज्यादा यश भीष्म को देना चाहते हैं कृष्ण। इसलिए ये बताया कि व्यास जी भी हार गए और कृष्ण भी हार गए और जिस का शोक दूर नहीं हुआ, तो ये भी कारण है। जैसे कि उद्धव जी से विदुर जी ने जब कहा था कि मुझे ज्ञान दीजिए जो भगवान कृष्ण ने दिया था आपको जब भगवान कृष्ण परम धाम गए, तो विदुर जी उस समय नहीं थे मौजूद, तो उद्धव जी ने क्या कहा? मैत्री मुनि के पास जाइए, वो आपके पिता के समान है और मैं आपका पुत्र के समान हूं। उद्धव जी जो है ना विदुर जी से नीची पीढ़ी में थे, एक पीढ़ी नीचे थे, तो पुत्र के समान है उद्धव जी कृष्ण के समान है, वो पांडवों के समान है, तो विदुर जी पिता के समान है ना। और मैत्री जी ऊपर की पीढ़ी के, व्यास जी के मित्र हैं, है कि नहीं? व्यास जी के मित्र हैं मैत्री जी, तो बड़े हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैत्री जी के पास जाइए। और दूसरा कारण यह भी था कि मैत्री जी को ही भगवान ने आदेश दिया कि ये जो मेरा संदेश है तुम विदुर जी को कह देना, बता देना, ये भी कारण। कपिल भगवान ने माता देवभूति को उपदेश दिया अपनी माता को, क्यों? और कोई था ही नहीं उपदेश देने के लिए, तो पुत्र ही माता को उपदेश दे रहा है। कपिल भगवान का अवतार ही हुआ था सांख्य योग का ज्ञान देने के लिए, तो और कोई जानने वाला था ही नहीं इस योग को, सतयुग में विष्णु का ध्यान, तो कैसे विष्णु का ध्यान किया जाए जो विद्या है, तो कपिल भगवान ने अपनी माता को दी और फिर जो है ना मतलब संसार में प्रचलित हुई, है ना। तो इस प्रकार से कई कारण हैं, भीष्म को जो है ना सिद्ध करने के लिए ये परम भक्त हैं। देखो भीष्म के मुख से इतना ज्ञान निकलवा रहे हैं, 56 दिन तक भीष्म जी ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, जबकि वो मृत्यु से पर पड़े हैं, बाणों से एक एक अंग, एक अंगुल भी जगह नहीं है भीष्म के शरीर में जहां बाण ना लगा हो, आर पार एक अंगुल भी जगह नहीं थी भीष्म जी के शरीर में खाली कि जहां बाण आर पार ना हुए हों। वो जमीन को नहीं छू रहे थे, बाणों की सजा पर लेटे थे, बाण सामने से गए और पीछे निकले तो बाणों की सजा पर वो लेटे हुए हैं भीष्म, और तो भी ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो ये भी भीष्म जी को सिद्ध करने के लिए कि महान भक्त हैं, ठीक है।
नमो विष्णु पदाय विष्णु पृष्ठाय भूतले श्री मते भक्ति वेदांत स्वामी नाम ते सरस्वती देवी गौरवाणी ने निर्विशेष सुन वाली पाशाने नाम ते जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद
प्रभुपाद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
जय सीताराम सीताराम
कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम